नज़ला उसने नाजिल की, किसने? वो अल्लाह जिसका ये तारुफ आया है। कौन सा अल्लाह? जिसके बारे में है कि ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके अलावा कोई इबादत के लायक ही नहीं, जो हाई है, जो कयूम है, उसने नाजिल की है। आले कल किताब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर, आपके दिल मुबारक पर ये किताब नाजिल हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से खुद घड़ के नहीं ले आए, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया इस किताब में कि अल्लाह ने नाजिल फरमाया। नज़ला बाबे तफ़ईल से इसके अंदर भी बतदरीज नाजिल होने का माना भी आता है। तो अल्लाह ताला ने तकरीबन तकरीबन 23 साल के अंदर इस किताब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। आप देखें कितना अरसा होता है 23 साल, कोई मामूली वक्त नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। जब हम इस किताब को सीखने के लिए आते हैं तो हम क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, कितनी देर पे हमारे दिल में उतर जाए? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या होता है, ये कोर्स कब खत्म होगा, कितना लंबा है? अच्छा इतने साल, 5 साल लग जाएंगे, 6 साल लग जाएंगे, ये तो बहुत लंबा है। जाहिलियत में हम चाहे 10-20 साल गुजार चुके हों, उसके ऊपर हमें अफसोस नहीं होता। जितनी हमारी उम्रें हैं, खुद सोचें कि उतनी उम्र जहालत में गुजार दी, उस पे भी कोई रोना है, लेकिन इस पे बड़ा दुख होता है कि अच्छा इतना लंबा, अच्छा कितने दिन क्लास है। अब ये भी मसला है कि अब क्लास भी हफ्ते में एक दफा ही हो, हम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, और कोर्स भी इतना होना चाहिए कि बस साल में खत्म हो जाए। तो ये तो 23 साल में तकरीबन उतरी पूरी किताब, हम कितनी तेजी से इसको लेना चाहते हैं। और इसमें हिकमत थी, इतने अरसे में उतरने में हिकमत थी बहुत बड़ी। इंसान एब्जॉर्ब करता है चीज को, फिर उसको अमल में लेकर आता है, और अगर एक बार ही दे दी जाती तो वैसा नहीं हो सकता था अमल उसके ऊपर। तो तजरीज में भी खैर है, थोड़ा थोड़ा लेने में भी खैर है। तो थोड़ा लें आप, उसको अमल में लेकर आए, उसको सोचें, उसको समझें, उस पर तदब्बुर करें, फिर आगे चलें। इसलिए इल्म लेने में ना सबर की बहुत जरूरत होती है। क्या कहा था खिजर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप मेरे साथ सबर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इल्म लेने में सबर चाहिए। ठीक है, तो जब आप इस किताब की तरफ आए तो ये सोच के आए कि सहाबा को, उनको तो 23 साल में मिला ये कुरान, अगर मुझे 6 साल में मिल जाता तो बहुत बहुत जल्दी मिल गया। इसमें हरी ना करें, इसमें जल्दी नहीं मचाएं, सबर से चलें। तो ये किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई बिल हक, साथ हक के। हक का मतलब क्या है? हक का एक तो मतलब है यानी सच्चाई के साथ, सच्चाई लेकर उतरी। इसमें जितनी बातें हैं वो सच है। नंबर 2 इसका मतलब क्या है, ये बामकसद किताब है। ऐसे नहीं कि कोई बस ऐसे ही बातें बता दी गई, जैसे लोग किताबें लिखते हैं बस सिर्फ अपना नाम और शोहरत के लिए। नहीं, इसका एक मकसद है, और वो मकसद क्या है, हिदायत। और तीसरा भी माना है हक का, हक का एक माना ये भी किया गया है कि कोई कौल और फेल उस वक्त हक कहलाता है जब वो ऐसे पाया जाए जैसे होना चाहिए, और जब उसकी जरूरत हो तभी वो उस वक्त आए। तो इसका मतलब है जब इसकी जरूरत थी तभी ये उतरा, ये किताब, ये कलाम तब उतरा था। ये हक है, और इसके हक हमारे ऊपर भी तो है ना, हम इसका हक दे रहे हैं। इसका हक क्या है, कभी जानना कि इसका भी कोई हक है? ये तो अल्लाह ताला ने हक कलाम उतारा है, हमने कभी परवाह भी की है इसको हक देने की? हमारी जिंदगी में हम कितना इसका हक अदा करते हैं? इसका हक है, इसको पढ़ा जाए, इसको सीखा जाए, इसको समझा जाए, मगर आज तो ये एहसास भी खत्म हो गया कि ये भी कोई कलाम है जिसके साथ वक्त लगाया जाए। एहसास ज़यां भी नहीं रहा, हमने दूसरों को क्या पहुंचाना था, हम तो खुद भी लुटा बैठे अपनी मता। असहाबे सुफा को देखें, वो कैसे थे, वो लोग अपने घर बार काम कारोबार सब छोड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में क्यों बैठे हुए थे, ये इल्म लेने के लिए। तो अल्लाह ने हमें हक दिया, इससे बड़ी सच्चाई कोई नहीं। मुसद्दिकन लिमा बैन यदई, ये तस्दीक करने वाली है उसके जो इससे पहले आई, यानी जो इससे पहले जो भी कलाम आए, जो भी सुहूफ, जो भी किताबें, जो भी नाजिल हुई, उनकी तस्दीक करती, उनको वेरीफाई करती। बैन यदई का मतलब क्या, जो इससे पहले थे, यानी उनको साबित करती है कि उनमें से कौन सी बातें थी जो सही है, क्योंकि वो सब तो डिस्टॉर्ट हो गए ना, सबकी जितने भी तालीमात उनके अंदर थी वो सब उलट पुलट कर दी, कुछ अंदर खुद अपनी चीजें शामिल कर दी और उसका वो हुलिया ही कुछ से कुछ बना के रख दिया। तो ऐसे तो वो चीजें नहीं उतरी थी, ऐसे वो कलाम नहीं उतरे थे। तो ये बताती है किताब कि उनमें से कितनी चीजें हैं जो अल्लाह की तरफ से और कितनी हैं जो लोगों ने एडिशंस की हुई। तो तस्दीक करती उसकी जो अल्लाह की तरफ से आया। वह अनजलत तौरात वल इंजीला मिन कब्लु हुदन लिन्नास। अब याद रखिएगा बीच में ये ला लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे रुकना नहीं है, इसको पूरा ले जाना है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस बन रहा है। वह अनजलत तौरात वल इंजीला, और उसने नाजिल की तौरात और इंजील मिन कब्लु हुदन लिन्नास, इससे पहले, किससे पहले, यानी कुरान से पहले, हुदन लिन्नास, वो हिदायत थी लोगों के लिए। पहले वो किताबें भी हिदायत की किताबें थी, वो किताबें भी उन इनके उन किताबों के बारे में भी आता है सूरह मायदा में, अगर देखें कि वो हुदन थी, वो नूर थी, वो उसमें मौइजा थे, यानी वाजो नसीहत थी, उनके बारे में भी यही कहा गया। तो इसका मतलब कि अपने जमाने में वो किताबें भी हिदायत का पर्पस से सॉल्व करती थी, हिदायत देने वाली थी। अब क्या हुआ फिर, अब क्या, क्यों नहीं उससे हिदायत ले सकते। याद रखिए तौरात के बारे में तो ये आता है कि तौरात तो बहुत दफा तो बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, यानी तौरात के नुस्खे जला दिए गए। जिस वक्त बुख्त नजर आया था उसने तो सारा, यानी यरूशलम की ईंट से ईंट बजा दी, हैकल को तबाह हो बर्बाद कर दिया, ये तौरात के नुस्खे खत्म कर दिए। तो फिर तो बाद में हजरत उजैर अलैहिस्सलाम और जो भी लोग बाकी बच गए थे बाबुल की असीरी से, कैद से निकल के आए थे, दोबारा फिर उन्होंने अपने हाफजे से तौरात लिखवाई थी, और फिर इसके अंदर सीरत भी मूसा अलैहिस्सलाम की शामिल कर दी गई, इसमें और भी चीजें शामिल कर दी गई। तो कुरान तो उसको तौरात कहता है ना जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, क्या जो बाद में आने वालों ने कई शामिल की चीजें, कईयों ने लिखी, वो तो फिर तौरात नहीं कहलाएगी ना, वो तो फिर उनकी अपनी बातें जो उनकी याददाश्त से थी, जो उनको जुबानी या जैसे भी याद थी तो उसके जरिए उन्होंने लिखी। इसी तरह इंजील का भी ये बात आती है कि इंजील भी नाम किसका है, जो खुतबात और जो अकवाल ईसा अलैहिस्सलाम के थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के जो आखिरी 2-3 साल जमीन पे थे उनके, तो उन्होंने जो इरशादात फरमाए थे, जो वही उनके पास आती थी, वो अब ये नहीं हमें पता कि वो उन्होंने अपनी जिंदगी में लिखवाए थे, वो लिखे गए थे, या लोगों को सिर्फ जुबानी याद थी वो चीजें, क्या था हम नहीं जानते इसकी डिटेल, कोई जरिया नहीं है मालूम करने का। हो सकता है कुछ लोगों ने लिख लिए हों, कुछ लोगों ने सिर्फ याद कर लिए हों, मगर बहरहाल जब वो उठा लिए गए तो उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत लिखी गई, फिर उनके ये लोगों ने अपनी अपनी याददाश्त से, अपनी मेमोरी से उनके जो खुतबात थे वो लिखे, और जो भी किसी के पास कोई लिख भी चीज फॉर्म थी उससे उससे लिख दिया। तो आज जो 4 किताबें मिलती हैं इंजील की, मत्ता, मरकज, लूका और यूहन्ना, ये 4 किताबें, ये इंजील वो वाली इंजील नहीं है जो अल्लाह की तरफ से उतरी है, बल्कि ये तो वो इंजील है जो फिर बाद में लिखी गई ना। अब आप इससे देख लेना कि यानी वो ओरिजिनल सोर्स से नहीं आ रही, ये तो बाद में बनाई गई। अब हमारे पास क्या चीज है कि हमें उससे पता चले कि इनमें से कौन सी बात ठीक है और कौन सी बाद में शामिल की गई। एक ही सोर्स है कि कुरान से टैली करके देखें, कुरान वेरीफाई करता है उन चीजों को। और फिर या उनके अंदर बाज जगह पे लिखा हुआ मसीह अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, या उन्होंने लोगों को ये तालीम दी, तो हो सकता है वो बातें ठीक हो, मगर कुरान उनकी तस्दीक कर सकता है ना, कंपैरिजन करके देख सकते हैं। और बारनबास बाइबल जो है उसमें तो ये साफ आता है कि अल्लाह का बेटा नहीं कहा गया ईसा अलैहि सलाम को, लेकिन आज ये लोग उस बाइबल को नहीं देखते। बारनबास आप देख लें, उसके ऊपर सर्च करके भी आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगी ये भी एक बाइबल है, अब ये उसको लेते ही नहीं। तो ये पहले थी हिदायत का जरिया, लेकिन फिर वह अनजल अल फुरकान, अल्लाह ने फुरकान को नाजिल किया, फर्क करने वाले यानी कुरान को अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दिया। और अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील को, चूंकि अब वो उनकी जो तालीमात हैं वो ही मिट गई थी, तो अब वो नो मोर हिदायत का जरिया तो नहीं हो सकती ना। इन्नल्लज़ीन कफरू बिआयातिल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया अल्लाह की आयात के साथ। कुफर का मतलब क्या? इनकार कर दिया अल्लाह की आयात। सारों को इनकार करना अल्लाह की आयात का इनकार होता है, या फिर एक आयत का इनकार करना भी तमाम का इनकार होता है। जी, एक आयत का भी कुरान की अगर कोई इनकार करता है, देखिए आप वो पिछली तो अब चली गई ना, उनके ऊपर तो हम यही ईमान रखेंगे कि जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ था हम उसको मानते हैं, ठीक है, तौरात थी जो भी इंजील नाजिल हुई थी हम उसको मानते हैं, सबसे पहले तो हम मानने वाले, बशर्ते कि वो जो ओरिजिनल वाली थी, ठीक है। मगर कुरान तो अब सेव्ड है, प्रोटेक्टेड है, अल्लाह ताला ने खुद इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। सूरह हिजर में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने इस जिक्र को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया, और हिफाजत हो रही है आज तक, 1400 साल गुजर गए। अब इन आयात का कोई इनकार करता है, यानी इनकार की यही फॉर्म्स है ना, किसी एक आयत को कह देना हम नहीं इसको मानते, ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता, ये तो चल ही नहीं सकती, तो ये ना मानना, ये इनकार करना, लहुम आदाबुन शदीद, उनके लिए शदीद अजाब है। आप खुद सोचें, अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए इंतजाम किया हिदायत का, उसके लिए कितना बड़ा इहतमाम हुआ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम 23 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही लेकर नाजिल होते रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत में बेस्ट इंसान को अल्लाह ताला ने चूज किया अपनी इस कलाम को नाजिल करने के लिए, कोई छोटी बात थी? और आराम से बैठे हुए किसी कोई कह दे उठ के हम नहीं मानते जी, तो ये इसको कोई मामूली चीज ना समझना, जो ऐसा करेगा ना ये कोई छोटा जुर्म नहीं है अल्लाह के आगे, उसके लिए शदीद अजाब है। तो जुबान खोलने से पहले ना करोड़ों दफा सोचें कि जब ये कहें ओ हाँ हम नहीं मानते, ये तो आज की, ये तो ऐसी पहले जमाने की बातें थी, ठीक है अब जो भी है, आज तो नहीं है एप्लीकेबल, आज तो ये चल ही नहीं सकता जी, तो ये इनकार करना ही है। गोया आप ये कह रहे हैं नऊज़ु बिल्ला के अल्लाह को नहीं पता था कि 21st सेंचुरी में आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपने कैसे चलना है, नऊज़ु बिल्ला। याद रखना, वल्लाहु अजीजुन ज़ु इंतिकाम, अल्लाह ताला गालिब है, अथॉरिटी है उसके पास, और उसका गलबा कैसा है, अजीज वो होता है जिसके पास अल्टीमेट पावर है, यानी कोई और उसके आगे खड़ा नहीं हो कि ये कह सकता कि हाँ कोई उसकी पावर को चैलेंज करे या उसे ज्यादा पावरफुल हो, अजीज वो है कि जो जो मर्जी करे उसके पास अथॉरिटी है, जो मर्जी, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, अल्टीमेट पावर जिसको कहते हैं ना, अल्टीमेट अथॉरिटी, वो होना, वो अजीज है और दुंतकाम है, इंतकाम लेने वाला, यानी उसके पास पावर है कि वो इंतकाम ले, वो पकड़ कर सकता है, और उसके पास पावर एक एक होता है ना, इंतकाम इंसान कब नहीं देता, जब बेचारे के पास, इंसान के पास पावर ही नहीं होती, कहता है हम क्या, मैं किसी से बदला लूं, कैसे बदला लेगा, क्योंकि उसके पास कोई उसकी इतनी ताकत ही नहीं है, अल्लाह ताला के पास ताकत भी है, वो इंतकाम ले भी सकता है, मगर कुदरत के बावजूद वो उसका हिल्म है, ताकत तहम्मुल है कि वो इंसान को छूट दिए रखता है, मगर याद रखना ना जा उसके तहम्मुल पर कि बेढब है गिरफ्त उसकी, डर उसकी देरगीरी से कि सख्त है इंतकाम उसका। तो इस अल्लाह ताला के इंतकाम को आवाज ना दो, तुम इनकार करके जाओगे कहाँ, डर जाओ अल्लाह के इंतकाम से। मत कुरान के अंदर इस तरह की बातें लेकर आओ कि हम नहीं मानते, हम ये नहीं, हमें सही लगता, हमें वो नहीं सही लगता। याद रखो ये कलाम किसकी तरफ से नाजिल हुआ है, उसकी तरफ से, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिर अर्दी वला फिस्समा, जिससे तो बात ही खत्म हो गई ना, जिससे कोई चीज छुपी ही नहीं है, जो जमीन में है, जो आसमान में, कोई चीज उससे छुपी भी नहीं। यानी उसके इल्म का आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिर उसका इल्म कैसा होगा, सोचें, जिससे कोई शई उनमें आ गया, कोई चीज भी चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। जैसे लुकमान अलैहि सलाम ने अपने बेटे से कहा था कि बेटा एक खरदर के बराबर, राई के दाने के बराबर भी कोई चीज किसी चट्टान में भी होगी ना, अल्लाह उसको भी निकाल के ले आएगा। तो सोचें उसका इल्म कैसा है, उसने ये कुरान नाजिल किया है, तुम ऐसे ही मामूली बात समझते हो, तुम उठ के जब मर्जी उठ के कह दो हम नहीं मानते जी ये बात। सोचो तो सही कि किस इल्म वाले ने इसको नाजिल किया, जमीन की गहराइयों में कोई चीज हो, समंदरों में कोई चीज हो, गारों में कोई चीज हो, पहाड़ों में कोई चीज हो, कहीं छुपी हो, इंसान तेरे तो इल्म का ये हाल है, तेरे तो इल्म का ये हाल है कि जहाज गायब हो जाते हैं, इतने इतने बड़े जहाज 300 400 लोगों को उठाया होता है, वो गायब हो जाते हैं और पता ही नहीं है कि वो कहाँ गिरे, वो कहाँ है, आज तक नहीं समझ आई इनको। बरमूडा ट्रायंगल में वो चले जाते हैं, कई दफा साकिन हो जाते हैं जहाज उनकी, जिसकी हिस्ट्री कभी आप पढ़े, इनको यही नहीं पता वो गए किधर। मलेशियन एयरलाइन का जहाज गायब हुआ, आज तक यही नहीं पता वो गया कहाँ। इंसानों को तो छोड़े, एक इंसान की क्या हैसियत है, चलो वो तो छोटा सा एक इंसान कहीं छुप गया, तुम तो बड़े बड़े जहाजों को ट्रेस नहीं कर सकते, तुम क्या अपने इल्म की बातें करते हो, क्या अपनी अकल की बातें करते हो, और अल्लाह के कलाम के आगे लेकर अपनी अकल को खड़े हो जाते हो, इसका मुकाबला करते हो। तो वो जिससे छुपी ही नहीं, ये नहीं कहा गया सारा इल्म अल्लाह को है, बस इस बात को क्या के बात ही खत्म कर दी कि उससे कोई चीज छुपी, एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड, उसका इल्म इतना है, और सिर्फ जाहिर में नहीं एक्सपोज, उसके बातिन, उसका जाहिर सब कुछ वो जानता है। वो तुम्हें ये किताब दे रहा है तो उस पे भरोसा करो, उसकी बात को मानो, समझो कि ये जो कलाम उसने नाजिल किया ना, ये उस जात ने, कि आप देखते हैं ना जब आप कोई किताब पढ़ने लगते हैं इसका ऑथर कौन है, इसको किसने इसको लिखा है जनाब, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो इस फील्ड का। अब हम ये देखते हैं भाई इस वायरस के बारे में, तो फला डॉक्टर ने ये कहा, फला ने, अच्छा उसकी क्या एक्सपीरियंस और उसका क्या नॉलेज है और उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, ये देखते हैं ना। अल्लाह की किताब उसकी तरफ से है, वो जात जिससे कोई चीज छुपी ही नहीं हुई, तो क्या उस पे भरोसा नहीं करेंगे। याद रखिए जब इंसान अल्लाह का मकाम जान जाता है ना कि वो अल्लाह कौन है, उसकी अजमत दिल में आ जाती है, वो अल्लाह वो है अच्छा जिसने जिससे जिसका इल्म इतना वसी है, तभी उसके कलाम की भी अजमत दिल में आएगी। जब अल्लाह की आपके दिल के अंदर कोई अजमत नहीं है, कोई कदर नहीं है, तो उसके कलाम की भी कदर नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, अगर आपने ये देखना है ना कि आपके दिल में अल्लाह का मकाम क्या है, अब कोई थर्मामीटर तो है नहीं जिससे हम देख लें, कैसे पता चलेगा मेरे दिल में अल्लाह तआला का क्या मकाम है, तो आप जरूर देखें कि आपके दिल में अल्लाह की किताब के लिए, आपकी जिंदगी में अल्लाह की किताब का क्या मकाम है, वही मकाम आपके दिल में अल्लाह के लिए। जितनी मोहब्बत, जितना वक्त, जितनी अकीदत, जितना आप इसके लिए अपने आप को देंगे इस किताब के लिए, उतना ही पता चलता है कि आपकी दिल में, आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला का क्या मकाम है। और जितना उसके कलाम को आप पीछे फेंकेंगे, इसका मतलब है आप अल्लाह ताला की कदर ही नहीं पहचानते, आपने जाना ही नहीं अल्लाह को, आपको पता ही नहीं। इसीलिए फिर हम जॉब के लिए भी भागते हैं, घरों के कामों के लिए भी भागते हैं, बच्चों के कामों के लिए भी भागते हैं, और कुरान को पीछे डाला होता है। इसके लिए हम वक्त नहीं निकाल सकते, बाकी सब चीजों के लिए वक्त है, इसके लिए वक्त नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता ना, ये प्रॉब्लम है, वैल्यू नहीं पता है। और ये सच बात है, ये ना कहे नहीं नहीं जी हमने तो बड़ा इसको ऊपर रखा हुआ है शेल्फ के ऊपर, बड़ा हम इसकी इज्जत करते हैं, हम तो इसको उठाते ही नहीं है, तो उठाते ही नहीं है, वाकई नहीं फिर उठाते, क्योंकि इज्जत इतनी हम करते हैं ना कि हम इसको हाथ ही नहीं लगाते। तो हमने तो इतना मुकद्दस इसको किया है, ये इसको कदरों कीमत करना नहीं है। जब कदरों कीमत इसकी आती है ना, तो चाहे कितनी मसरूफियत हो, बच्चे घर में है या नहीं है घर में, गर्मियों की छुट्टियां या सर्दियों की छुट्टियां, वीक डेज है या वीकेंड है, मसरूफियत ज्यादा है या कम है, घर में मेहमान है या नहीं है, फिर कोई चीज इस किताब के रास्ते में हायल नहीं होती। आप मुझे बताएं कोई और हस्ती, उसका नाम आप लें जो जिसके लिए आप ये बात कह सकें, इन्ना हु ला यख्फा अलैहि शेउन फिर अर्दी कला के समय, कि बेशक वो है जिसके पर कोई चीज पोशीदा नहीं है जमीन में और ना आसमान। ये किसी और के लिए कह सकते हैं, यहाँ पे लाजमी अल्लाह ही का नाम आएगा, और कोई हस्ती ऐसी नहीं, चाहे वो ईसा अलैहि सलाम हो, चाहे वो कोई फरिश्ते हो, चाहे वो कोई जिन्नात हो, चाहे वो कोई कोई गैब का दावा करने वाले लोग हो, कोई कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर तो कोई चीज छुपी ही नहीं हुई आसमान और जमीन, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता। जब अल्लाह के मुकाबले में कोई और हस्ती नहीं है इस कायनात में, तो मुझे ये बताएं अल्लाह के कलाम के मुकाबले में और कौन सी किताब हो सकती है, और कौन सा इल्म हो सकता है, और कौन सा कलाम हो सकता है। जब अल्लाह का कंपैरिजन किसी और से नहीं हो सकता, तो उसके कलाम का कहां से कंपैरिजन किसी और के साथ हो सकता है? फिर भी हम भाग भाग के दूसरी चीजों को लेते हैं, भाग भाग के उनके पीछे हम दीवाने हुए होते हैं, कभी शॉपिंग के शौक में, कभी काम कारोबारों के शौक में, कभी और चीजों के शौक में। वो शौक हमें ज्यादा प्यारे होते हैं इससे, इसके इल्म से। क्यों? इस वजह से कि इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वो कदर ही नहीं हमने पहचानी, क्योंकि हाँ अल्लाह ही की कदर नहीं हमारे दिलों में, तो उसके कलाम की कदर क्या होगी? जिसको अल्लाह की कदर आ गई ना, वो इस कलाम की कदर करेगा, सिर्फ वो कर सकता है। अल्लाह अकबर। तो जांच लें, सारे जांच लें अपने दिलों के अंदर, और फिर उसके बाद ना दावे करें कि हाँ मुझे तो अल्लाह से बहुत मोहब्बत है। अगर अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, तो उसके कलाम से बहुत मोहब्बत होगी फिर। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनते हैं।
अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैह وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء